ओम शांति। सहन शक्ति का पुरुषार्थ में महत्व, इस विषय पर क्लास कराएंगे आदरणीय भगवान भाई। आप किचन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। आप आज का विषय आप सभी को क्लियर करेंगे आदरणीय भगवान भाई।
ओम शांति। तो आज का विषय है सहन शक्ति का पुरुषार्थ में महत्व। वैसे तो हम सभी इसी लक्ष्य से यहां पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम बाप समान बने, हम कर्मातीत बने, विदेही बने, अशरीरी बने या बिंदुर बने, ये हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य है, ये हमारी सबकी मंजिल है जहां हम सभी जा रहे हैं। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए, इस मंजिल में के तरफ जाते समय रास्ते में जो भी कुछ रुकावटी आते हैं, इस रुकावटी में हम पास हो जाए और समय पर मंजिल पर पहुंच जाए, इसका साधन है ये सहन शक्ति। जिस तरह से हम कोई यात्रा करने के लिए जाते हैं, यात्रा करते समय वो रास्ता चाहे जंगल से, कई बरसात से, आंधी तूफानों से वो रास्ता जाता है, तो उन आंधी तूफानों से, जंगलों से बचने के लिए कुछ साधन भी लेते हैं, तब जाकर के मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह हमें भी इस ज्ञान मार्ग में, इस विधेयी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, अशरीरी स्थिति या कर्माती स्थिति, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते में भी कई बाधाएं, चाहे मनुष्य के तरफ से, प्रकृति के तरफ से, चाहे अनेक शारीरिक रूप से, कई प्रकार से परीक्षाएं होंगी, विघ्न आएंगे, तो इस विघ्नों में भी हम न डरे, वहां ही न बैठे। तो इसीलिए सहन शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसके पास ये सहन शक्ति है, उस यात्रा में उमंग उत्साह से सदा चलता रहता है। इस यात्रा में समय पर पहुंचने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी हम चलते हैं शुरू में जोश में, और जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, कई विघ्न आते हैं, तो हमारा उमंग खत्म हो जाता है। चाहे सेवा का उमंग, चाहे पुरुषार्थ का उमंग, चाहे एक दूसरे के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो इसीलिए इस योग मार्ग में सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो सहन शक्ति से हमें पुरुषार्थ में क्या फायदे होंगे और क्यों आवश्यकता है यह सहन शक्ति की? जैसे आप सभी को बताया, मंजिल हमारी बाप समान बनने की, कर्मातीत बनने की, अशरीरी बनने की, विधेयी बनने की है। लेकिन इसके लिए हमारे पास आत्मिक ताकत हो, और ये ताकत आते हैं सहन शक्ति से। क्योंकि जितना हमारे पास सहन शक्ति का गुण है, उतना हम योग में एकाग्र होकर के बैठ सकते हैं। नहीं तो कई भाई बहने बोलते हैं, जब हम योग लगाते हैं हमारे योग में माया आते हैं। तो माया क्या आते हैं? माया मतलब कोई राक्षस आकर के हिलाता है? माया क्या है? सारा दिन किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, वही बातें बुद्धि को, मन को एकाग्र होने नहीं देती, इसको कहते हैं माया। तो इसीलिए योग मतलब ऐसा नहीं कि योग लगाने के लिए बैठे उसी समय ध्यान रखे, लेकिन हमें क्या करना है, सारा दिन भी अपने दिनचर्या में स्वयं के ऊपर ध्यान रखना है। सारा दिन हमारे साथ कोई बोलता है, कोई विघ्न डालता है, उन बातों में हल्के रहना है। और हल्के रहे उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति चाहिए। अन्यथा अगर उन बातों में भारी रहेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत भी बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, फिर भी बीच में याद आएगा उन्होंने मुझे क्यों कहा, मेरे साथ इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, फिर इस बात को निकाल देंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को क्यों कहा। वही बातें आपको अंतर्मुखी बनने नहीं देगी, वही बातें आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देगी। इसीलिए अगर इस योग मार्ग में योग की अनुभूति करनी है तो इसलिए सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। और सहन शक्ति क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? सहन शक्ति से ही हम मनन चिंतन कर सकते हैं। जैसे पहले जमाने में मक्खन माताएं निकलती थी, दादी मां या जो बुजुर्ग माताएं थी, सवेरे सवेरे मक्खन निकालती थी। मक्खन किसमें निकाला जाता है? मटका, जो ठंडा मटका होता है उसके अंदर दही जमाते हैं, और वो मटके के अंदर क्यों जमाया जाता है? क्योंकि वो ठंडा रहता है, उसमें वो मथनी रखते थे और दो रस्सी लेकर के खंबे से बांध करके क्या करते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। वो काफी समय तक घुमाने के बाद उस दही के अंदर जो मक्खन है वो मक्खन क्या होता है, बाहर आता है। और मक्खन खाने से क्या मिलते हैं, ताकत मिलती है। छाछ अलग, मक्खन अलग होता है। इसी तरह हमें भी ये बाबा का जो ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान से भी मनन चिंतन करके मक्खन निकाले। तो हमारे पास मटका कौन सा है? यह दिमाग, ये हमारा मटका है। लेकिन यह मटका कैसे चाहिए? शांत चाहिए। जितना ये मटका, जितना हमारा दिमाग, जितना शांत है, उतना इसके अंदर हम मक्खन निकाल सकते हैं। और इसकी रस्सी कौन से है? मन और बुद्धि। इसको आगे पीछे करते रहो, बाबा ने ये बात कैसी कही, इसको मैंने जीवन में लाने से क्या फायदा। जैसे वो मथनी होते हैं, उसको 5-6 खाचे होते हैं और उस खाचे को आगे पीछे करो तो मक्खन निकलता है। तो इसी तरह आप जो भी कोई एक मुरली की पॉइंट सुनते हैं, उसको 5-6 क्वेश्चन पूछो, ये बाबा ने ऐसा कहा, इससे क्या फायदा होगा, इसे हमें जीवन में क्यों लाना है। तो इस तरह से हम उस बात से बहुत अच्छा मक्खन निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए मटका कैसे चाहिए? शीतल शांत चाहिए। ये तो कई भाई बहने बोलते, मेरा मनन चिंतन चलता ही नहीं, मेरे बुद्धि में ज्ञान रहता ही नहीं, क्योंकि मटका कैसा हो गया है, गरम गरम तवा, गरम तवे के ऊपर पानी की छींटे रह नहीं सकते, उड़ जाते हैं। इसीलिए दिमाग को कैसे रखना है, शांत शीतल। और वो कब रहेगा, जब सहन शक्ति है तब। इसलिए सहन शक्ति के द्वारा हम मनन चिंतन कर सकते हैं, अंतर्मुखी बन सकते हैं, एकाग्र रह सकते हैं। जितनी हमारे पास सहन शक्ति है, उतने हमारे विचार, जिसको कहते संकल्प, संकल्प बहुत कम चलेंगे, संकल्प बहुत पॉजिटिव चलेंगे, जिससे हमारी ऊर्जा बच जाएगी, शक्तियां बच जाएगी। और जब हम संकल्प शक्ति को बचाते हैं, उतनी हमारी आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। आत्माभिमानी स्थिति माना कोई और चीज नहीं है, आत्माभिमानी स्थिति अर्थात जो कम सोचता है, सकारात्मक सोचता है, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। तो इसलिए सहन शक्ति से हम आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, उसके लिए यह मार्ग सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव होगा। हमारे इस योग का नाम क्या है, सहज राजयोग। लेकिन यह सहज राजयोग कठिन क्यों लगता है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। इसलिए अगर सहज योगी बनना चाहते हैं तो क्या करना है, सहनशील बनना है। सहन शक्ति जितनी हमारे अंदर है, उतना हम शुभ भावना, शुभ कामना रख सकेंगे, उतना हम औरों के लिए दुआएं निकाल सकेंगे। अगर सहन शक्ति नहीं, दुआएं नहीं निकलेगी। उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर वृत्ति अशोच्य बन जाएगी, वृत्ति खराब हो जाएंगी, इससे व्यवहार भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें सहनशील बनना बड़ा आवश्यक है। सहन शक्ति के द्वारा हम जो अभी बाबा ने लेटेस्ट मुरली सुनाई, बाबा ने कहा कि बच्चे साइलेंस की पावर को जमा करो। लेकिन यह साइलेंस की पावर जमा करने का साधन है सहन शक्ति। जितना हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, उतनी साइलेंस पावर जमा होती रहेगी और ये साइलेंस पावर हमें भविष्य में बहुत काम आएगी। तो कहने का मतलब सहन शक्ति सभी गुणों का फाउंडेशन है। सहन शक्ति के द्वारा धैर्यता का गुण, एकाग्रता का गुण, अंतर्मुखता का गुण, शांति का गुण, कई गुण हमारे जीवन में आएंगे। इसीलिए बाबा ने इस वर्ष में कहा ना, सहन शक्ति की देवी या देवता बनो, कि हमारे पुरुषार्थ जीवन में इस गुण की या इस सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। जिस मंजिल पर हम जाना चाहते हैं, अगर ये साधन हमारे साथ नहीं है तो मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस गुण को अपनाना है। लेकिन प्रश्न ये आता है, ये गुण हमारे अंदर कैसे आए? इसका महत्व अभी आपको बताया कि सहन शक्ति के हमारे पुरुषार्थ जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन ये आए कैसे, इसके लिए हमें क्या जरूरी है? तो सहन शक्ति का गुण हमारे जीवन में आए, इसके लिए हमें कर्म सिद्धांत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ये ड्रामा रिपीट होता है हूबहू, ये ज्ञान साथ में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा, ये सब बाबा ने बातें क्यों कही? इन सभी बातों से हमारे जीवन में सहन शक्ति आएगी। अगर ये सब नॉलेज होने के बावजूद भी फिर भी कभी कभी हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब मुझे कर्म सिद्धांत का ज्ञान क्लियर नहीं है, ये ड्रामा का ज्ञान क्लियर नहीं है। इसीलिए जितना हमारे जीवन में कर्म सिद्धांत का ज्ञान क्लियर होगा उतना हमारे अंदर ये गुण आता रहेगा। आज दुनिया में भी देखो सहन शक्ति की कमी है और जिसके कारण आज उनको जो बीमारियां होती है, जिसको कहा जाता है तनाव, वैसे कहा जाता है 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी रही प्रगति की और 21वीं सदी को कहा जाता है यह तनाव की सदी है। तो इस तनावपूर्ण सदी में हम उस तनाव की चपेट से दूर रहे, इसलिए बाबा ने यह हमें ज्ञान दिया है। लेकिन यह पूरा ज्ञान होने के बावजूद भी अगर हमें तनाव होगा, इसका मतलब इस ज्ञान को अच्छी तरह हमने समझा नहीं, क्योंकि हमें तनाव या गुस्सा कब आता है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इन्होंने मेरे पैसे लेके गया लेकिन वापस नहीं दिया और इसीलिए मेरे संकल्प चल रहे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मेरी सास है, मैं इतना काम करती हूं, इतना सारा सब मेहनत करती हूं, तो भी मुझे क्या कर रही है, तंग करती है, इन सब बातों से क्या होता है, गुस्सा आता है, तनाव आता है, सहन शक्ति नहीं रहती। कई कहते हैं हम इसके रास्ते में कभी नहीं जाते, हम सदा झुक करके चलते हैं, तो भी ये व्यक्ति मुझे क्या कर रहा है, तंग कर रहा है, और इसीलिए मुझे क्या होता है, गुस्सा आता है, मुझे सहन नहीं होता। मुझे योग में वही बातें याद आती, तो ये सब तनाव की, हर आत्मा की बातें अलग अलग है, लेकिन इन बातों को ना किसी को सुनाने से कम होगी, भले आपको उनसे राय मिलेगी, लेकिन जो आपका उनके साथ जो हिसाब किताब बना हुआ है, उस हिसाब किताब को आपको चुक्त करना ही होगा। तो ये जो आज हमारे साथ जो घटनाएं हो रहे हैं, ये बातें हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब है हमने उन लोगों के साथ, उन साथियों के साथ अनेक जन्म में ऐसा कर्म किया है और उस कर्मों का ये फल है। इसीलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी बातों को मुझे सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम हल्के रह सकेंगे, तब जाकर के हम सहनशील बन सकेंगे, तब जाकर के जिस मंजिल पर हम जाने वाले हैं, जैसे बनने वाले हैं, उन बातों का चिंतन कर सकेंगे और साथ में उस व्यक्ति के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा। भले वो व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो भी हमें पता है कि ये मेरा ही हिसाब किताब है। तो इसीलिए ये सब घटनाएं होते हुए भी, बातें होते हुए भी, हम उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसीलिए कर्म सिद्धांत का ज्ञान सदा बुद्धि में रखना है। भले आप इस जन्म में उसके रास्ते में नहीं गए हैं, लेकिन कभी ना कभी तो गए हैं ना। कई लोग बोलते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, इतना बाबा से योग लगाते हैं, इतना तन मन धन से सेवा करते हैं, तो भी ये मेरे जीवन में विघ्न कैसे आ रहे हैं। ओम शांति में इस जन्म में आ रहे हैं, पिछले जन्म में कहां थे ओम शांति में, तो पिछले जन्म के आपके हिसाब कहां गए। इसीलिए हमें क्या करना है, इन हिसाब किताब को चुक्त करना है। हिसाब किताब चुक्त करने के तीन तरीके हैं, एक तो सहन करके, या फिर योग लगा करके। अगर ये दोनों से रह गए तो धर्मराजपुरी की सजाओं से, तो कौन सा इजी है, सहज कौन सा है, योग लगा करके। और योग लगाने से सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, भविष्य में पद भी मिलेगा, और जो मेरे साथ वो घटना आने वाली है वो नहीं आएगी, तो कितना अच्छा है। इसीलिए बाबा क्यों कहते बच्चे योग लगाओ, योग से 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो जाते हैं। तो जो हमने औरों के साथ जो जाने अनजाने या अहमवश कुछ ऐसे उल्टे सुलटे व्यवहार किए हैं, अगर उसको चुक्त करना है तो योग। अगर हम योग नहीं लगाएंगे तो वो घटना हमारे जीवन में आएंगी, चाहे अपमान के द्वारा आएंगी, चाहे किसी के तंग करने के हिसाब से आएंगी, तो उसको मुझे सहन करना है। सहन करने से भी उस व्यक्ति के साथ के हमारे हिसाब चुक्त हो जाते हैं, ये भी एक तरीका है। अगर ये दोनों से नहीं करेंगे तो धर्मराज की सजा है। ये प्रकृति के प्रकोप क्या है? प्रकृति ये कहते कि तुम्हें मैंने मुख ये गाली देने के लिए नहीं दिया था, ये कान कोई परचिंतन की बातें सुनने के लिए नहीं दिया था, ये आंखें कोई व्यर्थ देखने के लिए नहीं दिया था, इसीलिए तुम्हारे हिसाब किताब बने हैं। तो उस हिसाब किताब को विनाश काल में चुक्त करेगी, और जब तक हिसाब किताब चुक्त नहीं होंगे तब तक आत्माएं वापस नहीं जा सकेंगी। इसीलिए हमें क्या करना है? योग लगा करके, इसीलिए बाबा ने खास इस वर्ष में अखंड योगी बनने के लिए कहा हुआ है। अखंड योगी बनो, जो अनेक जन्मों में हमें इस वर्ष में अनेक वर्ष जो पुरुषार्थ किया, जो उस वर्षों में जो हमने विकर्म विनाश नहीं किए हैं, वो इस एक साल में हमें अखंड योग लगा करके करना है। तो इसलिए हमें सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए कहा, पहली बात कौन सी जरूरी है? कर्म सिद्धांत की बात। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर एक घटना मुझे याद आती है, जिसको अभी जस्ट मैंने मराठी मैगजीन में लिखी है, कर्म सिद्धांत की घटना। इस घटना को मैंने कई बार सुनाया क्योंकि इससे कई बातें क्लियर होती हैं। नहीं तो कभी कभी हम सोचते कि ये मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसी सभी प्रश्नों का जवाब इस घटना से मिल सकता है। ये कोई कहानी नहीं है लेकिन ये सत्य घटना है। एक आगरा में एक झोपड़पट्टी थी, और उसी झोपड़पट्टी में एक पति और पत्नी रहते थे, दोनों बहुत गरीब थे। तो एक बार उनके पास एक मेहमान आया था, वैसे मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए। जब वो मेहमान दिल्ली में आया, जिस समय वो दिल्ली में पहुंचा उसी दिन दिल्ली के सब दुकान बंद थे। उसने काफी खरीदारी करने के लिए लाखों करोड़ रुपए लाया था, लेकिन जिस दिन दिल्ली में आया दुकान बंद थे, तो सोचा अभी मैं सारा दिन क्या करूं यहां, इससे अच्छा मैं आगरा देख के आता हूं। तो वो व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन आगरा घूम करके देखा, लेकिन रात में उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जिस होटल में जाए वो जगह नहीं मिलती थी, बुक थे सब। तो सोचता है मैं कहां जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ तो उसके बाद जो पैसा था वो क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो उसको याद आया मेरा एक मेहमान है जो गरीब था, उसका मेहमान था, भले दूर का था लेकिन था मेहमान, तो उसका एड्रेस था, उस अनुसार वो उसके पास गया और जाकर के बातचीत की, खाना वगैरह खाया। रात को सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, उस बैग के अंदर 50 के 100 के नोट थे, उसने खरीदारी करने के लिए लाया था। तब जब बैग खोली इस व्यापारी ने, तो उस समय गरीब की जो पत्नी थी उसकी नजर बैग के अंदर गई, उसने देखा इसके पास इतना सारा पैसा है और हम तो कितना गरीब है। तो उसको रात को जब सोते हैं तो वही बैग नजर आते हैं सामने, नींद नहीं आती, उसको लगता है अगर वो सब पैसा मेरे पास आ जाए तो हमारी गरीबी खत्म हो जाए। रात को 12-1 बजे वो मेहमान तो अपना सोया था बैग सिराने लेके, वो बाहर गई और एक बड़ा पत्थर लाया, और पत्थर ला करके सोए हुए मेहमान के सिर में जोर से डाल दिया, उसका तो सिर टूट गया, मर्डर हो गया। और बैग लेकर के पति को दिखाई और पति को कहते कि अब हमारी गरीबी खत्म होगी। तो पति तो डर गया, कहा कि किसी को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, आपको और मुझे ही पता है। तो दोनों ने उठा करके बाजू में उनके झोपड़पट्टी के पीछे ही यमुना नदी बहती थी, दोनों ने उस मुर्दे को फेंक दिया इस घटना से भले वो लोगों से छिपा सकते हैं, पुलिस से छिपा सकते हैं, भले भगवान से भी छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से कोई छिपा नहीं सकता। आखिर उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट खरीद किया, एक बिल्डिंग बना दी, काफी सारा पैसा था, तो उन्होंने एक कार भी खरीद की, एक दुकान खोला, अपने लिए गोल्ड बनाया, गहने, अच्छे कपड़े सिलाई किए, गरीबी खत्म हो गई। दोनों को बच्चा वगैरह नहीं था, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ सालों के बाद दोनों को एक बच्चा हो जाता है, एक ही बच्चा था, इसीलिए बहुत प्यार, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, बच्चा काफी बड़ा हो गया, कलेक्टर बनने जैसा नौकरी करने के लायक बन गया। तो कुछ कारण से बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा, और एक ही बच्चा था इसलिए बहुत प्यार था, उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत खर्चा आया, और उसके पीछे उन्होंने कार बेची, सोचे कि बच्चा नौकरी लग जाएगा, कार तुरंत ले लेंगे, उसे ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, जो दुकान है वो भी बंद किया, और उसी पैसे से उस बच्चे की बीमारी के लिए खर्चा किया, बच्चा उसे भी ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने जो गहने बनाए थे वो भी बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उस बच्चे को अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली में लेके आकर के दिखाया, बहुत खर्चा आया, जो बनाई थी बिल्डिंग वो भी बेची, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं। तो बच्चा चला गया। बच्चा कौन था? वही व्यापारी अपना पैसा लेने के हिसाब से बच्चे के रूप में आया था। यह है कर्म सिद्धांत। अगर वो व्यक्ति कहे, भगवान मेरे जीवन में कितनी समस्या आई, मेरा बच्चा भी गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, समस्या कहां से आई? भगवान ने दी समस्या, उसने अपने कर्मों के द्वारा बनाई। तो इसी तरह आज हमारे जीवन की जो समस्या है, ये समस्या कहां से आई? आज कोई व्यक्ति तंग करता है, कोई परेशान करता है, या कोई विघ्न आ रहे, ये विघ्न या समस्या हमारे अनेक जन्मों का ये फल है। इसीलिए अब मुझे क्या करना है? सहन करना है। तब ब्राह्मण होने के बाद भी हम बड़े खुशी में रहेंगे, हल्के रहेंगे। इसीलिए बाबा कई सालों से कई मुरलियों में एक बात बहुत बार बार कह रहे थे, पिछले 2-4 सालों में, बच्चे समस्या का क्या करो? समाधान करो। तो समाधान कौन कर सकेगा? जिसको ये कर्म सिद्धांत का ज्ञान है। जब भी सवेरे उठते हैं आप, ये सोचो कि आज किसका किसका कर्जा है, वो लोग मेरे द्वार पर आएंगे तो मुझे उसको चुक्त करना है। समझो चलते चलते आप कर्म क्षेत्र पर गए, किसी ने आपको गाली दी, तो क्या सोचो? अच्छा इसका भी चुक्त हो गया आज। ये न कहो कि इसने मुझे क्यों गाली दी, इसने आखिर मुझे ऐसा क्यों कहा। तो इसीलिए हमें इन बातों से हल्के रहना है, क्योंकि जब हम हल्के बनते हैं उन बातों से, तब हमारा मन हल्का रहता है। जैसे पानी शांत है, शांत पानी में अगर कोई एक पत्थर डालो, चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर वही पानी शांत है, आप अपना चेहरा देखो, तो क्या हो जाएगा? स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। इसी तरह माया भी अभी क्या करते हैं, आपके जीवन में समस्या रूपी पत्थर डालते हैं, और जब समस्या रूपी पत्थर पड़ता है तो फिर हम सोचते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, मन की लहरें उठते हैं। और जिसका मन हलचल में है वो आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी योग में बैठते हैं, अगर मुझे वो परमधाम, वो शिव बाबा दिखाई पड़े, उसके लिए मन कैसा चाहिए? मन शांत चाहिए। इसीलिए जीवन में आने वाले या मंजिल में चलते समय जो भी रास्ते में कुछ नजारे आते हैं, उस नजारों को देख करके क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, इसका चिंतन नहीं करना है। तो इसके लिए सहन शक्ति का गुण हमें बहुत काम आ जाता है। तो एक तो कर्म सिद्धांत के ज्ञान के द्वारा हम सहनशील बन सकेंगे, दूसरी बात है सहन शक्ति का गुण हमारे जीवन में आए उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो भी कुछ बातें आती है उसको पॉजिटिव बना दो, तब भी आपके अंदर कौन सा गुण आएगा, सहन शक्ति का गुण आएगा। समझो किसी ने गाली दी, उसको पॉजिटिव लो, कैसे, ये गाली नहीं लेकिन मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगमयुग में गाली देगा वही क्या करेगा आपके ऊपर, द्वापर युग में गुलाब के फूलों से पूजा करेगा। तो सहन शक्ति का गुण आएगा। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव रूप में लेना है। इसलिए बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में कहा था, अब क्या करो, दुख की बातों को सुख में परिवर्तन करो। कोई दुख देने वाली बातें करता है उसको सुख में परिवर्तन करो, तब भी हमारे अंदर कौन सा गुण आएगा, ये सहन शक्ति का गुण आएगा। तो सहन शक्ति का गुण हमारे पुरुषार्थ जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, समझो किसी ने कुछ बोल दिया और सहन नहीं हुआ, तो उसका दूसरा अवगुण एक बढ़ जाता है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसका एक अवगुण बढ़ जाता है, कौन सा, पर चिंतन वाला अवगुण। जिसकी बातों को आपने सहन नहीं किया वो क्या करेंगे, फिर दूसरों को सुनाएंगे, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, और उससे वायुमंडल खराब हो जाता है। और जब परचिंतन करेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति नफरत, घृणा, ईर्ष्या बढ़ती जाएगी, तो माया के और बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए हमें इन छोटी छोटी बातों को खत्म करने के लिए यह सहन शक्ति का गुण अपनाना है। जो सहन करता है उसके पास, उसके अंदर ये परचिंतन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो परचिंतन करता है वो ज्ञान का चिंतन, आत्म चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसकी बातों को वो सहन नहीं करता वो उसको वो अपना दुश्मन मानेगा, और योगी का ना दुश्मन होता है ना कोई दोस्त होता है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपका योग उसके साथ ही लगा हुआ है। जब भी उसको देखेंगे उसकी बातें याद आएगी, बाबा भूल जाएगा। तो इसलिए हमें किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, तो हमें क्या करना है, उनकी बातों को सहन करना है, और कैसे सहन करना है, पॉजिटिव रूप में। इसलिए विघ्नों के या समस्या के बातों को, जैसे कहा ना, उसकी बातों को, दृष्टिकोण को बदल दो। ये जो समस्या, ये जो बातें हैं, उसके दृष्टिकोण को हमें परिवर्तन करना है। जैसे रामायण में एक घटना सुनाते हैं, जैसे राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने क्या किया, कई कई को दो चार ऐसी बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा रह गया और राम को तुम क्या बना रहे, राजा बना रहे। जब ये बातें उस मंत्रा ने सुनी, कई कई ने सुनी, तो राम को राजा बनाने के बजाय कहां हुआ, क्या हुआ, उसको वनवा में भेजने का फाइनल हुआ। और किसके कारण ये सब बातें हुई, मंत्रा के कारण। तो राम राजा बनने के बजाय वनवा में गया, उसकी सीता चोरी हुई, दशरथ भी विवेक वियोग का कारण शरीर छोड़ा, उसके साथ भरत भी साथ में गया, भरत राजा नहीं बना, लेकिन वो भी उसने भी कहा कि मैं भी राजा नहीं बनूंगा। लक्ष्मण साथ में गया तो उस चारों भाइयों का अलग अलग जाना हुआ, उसके घर में समस्या आई। ये सब किसके कारण आई? मंत्रा के कारण। तो जो भी मंत्रा को देखेगा उस किस भावना से देखेगा, अच्छी भावना से या बुरी भावना से देखेगा? कहेंगे देखो कितना इसने गलत काम किया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मंत्रा ने जो किया ठीक किया। अगर उसी समय मंत्रा ये काम नहीं करती तो राम क्या बन जाता? राजा बन जाता। जब राम राजा बनता वनवा में जाता, जब वनवा में नहीं जाता तो सीता चोरी होती, जब सीता ही चोरी नहीं होती तो रावण को मारता, जब रावण को ही नहीं मारता तो राम की महिमा कौन गाता? राम को महिमा योग्य किसने बनाया, किसके कारण बन गई? मंत्रा के कारण राम महिमा योग्य बन गया। तो राम मंत्रा को दुआ देगा या बद्दुआ देगा? दुआ देगा। यह है उस विघ्न का दृष्टिकोण, पॉजिटिव। इस तरह से हर ब्राह्मणों के पास भी एक दो मंत्रा जरूर होते हैं। हाँ, इस ड्रामा में नूंद है। और ये मंत्रा किसी लिए है? हमें महिमा योग्य बनाने के लिए। अगर वो व्यक्ति हमारे जीवन में ना होती तो हमारा कल्याण होता? इसीलिए जो व्यक्ति हमें विघ्न डालता है, तंग करता है, उस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण बदलना है। नहीं तो उसको देखते हमारा दिमाग क्या होता है? गर्म होता है। और दिमाग को गर्म रखना वर्तमान समय वैसे ही कहा जाता है हेल्थ की दृष्टि से बड़ा खराब होता है, क्योंकि दिमाग को गर्म करने से, निगेटिव सोचने से हमारे शरीर में कई प्रकार के केमिकल्स उतरते हैं और उससे बीमारियां पैदा होते हैं। समझो किसी व्यक्ति के साथ आपकी ईर्ष्या है, अगर ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या करने से केमिकल्स उतरते हैं और उससे पेट की बीमारी होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? अगर किसी को देख करके ईर्ष्या करेंगे आगे चल करके पेट की बीमारी शुरू हो जाएंगे। तो कभी ईर्ष्या नहीं करनी। अगर किसी को देखते हैं उसकी बीती हुई बातों को याद करते हैं, उसने मुझे ऐसा किया था, ऐसा कहा था, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। फिर जो बीती हुई बातों को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये बीमारियों का कारण यही है, सहन शक्ति नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीती हुई बातों को भूल जाओ। किसी को दूसरों को अपने कंट्रोल करने का क्या होता है? संस्कार होता है। मैं इसकी सास हूं, मेरे में ना पूछे कुछ ना करे, मैं इस ऑफिस का मालिक हूं, मैं ये हूं। और आजकल कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, सब चाहते कि फ्रीडम। और जब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो उस समय एक शरीर में केमिकल्स उतरता है, उसे अंदर से लगता है कि मेरा कोई नहीं सुनता, मैं क्या करूं। और उस समय एक शरीर में केमिकल उतरता है और उसे शुगर बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? ये सब कुछ देखते हुए भी हम अपने जीवन में सहन शक्ति का गुण अपनाएं, हर बात को पॉजिटिव सोचें, तो इस पुरुषार्थ जीवन में, योगी जीवन में सहन शक्ति हमें बहुत मदद करती है। ये सहन शक्ति सभी गुणों को हमारे जीवन में लाती है, हमें कर्म योगी बनाती है। हम जब योग में बैठते एकाग्र होकर के बैठते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है? ये सहन शक्ति का गुण अपनाना है। और जितना जीवन में जिन्होंने सहन किया उसका सत्यु का पद भी ऊंचा है। अभी भी आप पता कर सकते कि सत्यु में हम क्या बनेंगे। अगर जीवन में आपने बहुत कुछ सहन किया है आपका पद बहुत ऊंचा है। अगर बड़ा बनना है तो कौन सा गुण चाहिए? बड़ा बनने के लिए सहन शक्ति का गुण चाहिए। जैसे दही बड़ा बनाते ना, दही बड़ा बड़ा कैसे बना? बड़े की कहानी, बड़ा तू बड़ा कैसे बना, कैसे बनता है? वो सहन करता है। उसको रात को उड़द की दाल पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको क्या करते हैं, पानी से निकाल करके मिक्सी में पीसते हैं। उसके बाद मिक्सी से वो आटे को निकाल करके आटे को क्या करते हैं, फेंटते हैं। फेंटने के बाद उसको गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं। उसके बाद गरम तेल से निकाल करके इस वड़े को क्या करते हैं, ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी से निकाल करके क्या करते हैं, दोनों हाथों से उस वड़े को क्या करते हैं, भिगोते हैं, दबाते हैं उसको। दबाने के बाद उसको प्लेट में रखते हैं। प्लेट में रखने के बाद उसके अंदर क्या करते हैं, दही डालते हैं, इमली की चटनी डालते हैं, ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना वो, दही बड़ा। फिर खाने वालों को तो मजा आएगी, लेकिन उस खाने वालों को मजा कब आई, जब बेचारा इतना सहन किया। तो इसी तरह आपके जीवन को कोई देख करके उनको मजा आए कि वाह इनका जीवन, ये कितने लोग अच्छे हैं। आज बाबा के जीवन से, दादियों के जीवन से हमें बहुत आनंद आता है। क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जीवन में कुछ सहन किया है। तो इसीलिए हमारे जीवन से औरों को आनंद आए या हम बड़े बने, उसके लिए क्या करना है, ये सहन शक्ति का गुण अपनाना है। हमें भी लोग क्या करेंगे, पीसते भी रहेंगे, फेंटते भी रहेंगे। कब तक आटे को, कब तक फेंटते, जब तक वो हल्का नहीं बनता। इसी तरह हम भी जब तक ऊपर नहीं जाएंगे लोग फेंटते रहेंगे, उसके बाद गर्म बातें भी आएंगी, कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, कोई फुलाएगा भी, कोई दबाएगा भी। लेकिन इन सब घटना में क्या करना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के हम बड़े बन सकते हैं। तो इसलिए अगर जीवन को महान बनाना है, जिन आत्माओं ने जीवन को महान बनाया, महान कैसे बनाया और किस आधार से बनाया, इस सहन शक्ति के गुण से। आज कोई पत्थर को भी छेनी रतुड़ी लगाते तो वो पूजनीय लायक बन जाता है पत्थर, जबकि उसके अंदर कोई भगवान नहीं होता या कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन वास्तव में उसकी पूजा क्यों होते हैं, क्योंकि वो सहन करता है। जब पत्थर की पूजा होती है तो क्या हमारी पूजा नहीं होगी? वो पत्थर तो केवल कुछ दिनों तक सहन करता है, उसको कई युगों तक क्या करते हैं, उसकी पूजा होते हैं। तो संगम युग में थोड़े दिनों में हम अगर इन बातों को, जीवन में आने वाली बातों को सहन करेंगे, तो कितना युगों युगों तक हम सहन पूजनीय लायक बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहन करो, लेकिन इसके लिए सहन वही कर सकता है जिसके अंदर अभिमान नहीं है। अभिमान वाला सहन नहीं कर सकता, और जो सहन नहीं करता वो सोमान में भी नहीं रह सकता। इसीलिए दादी ने तीन बातें बताई, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो इसीलिए हमें सहन करने के लिए झुकना पड़ेगा। दीदी हमेशा तीन शब्द कहती थी, झुक झुक झुक, मर मर मर, सीख सीख सीख। झुकना सीखो, मरना सीखो और सीखना सीखो। कहते हैं ना, उखली में मुंह दिया तो, सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। जब हमें इस मार्ग में निकले ही हैं, तो हमें किसी की बातों को, किसी के अपमान की बातों को क्या डरना है। इसलिए हमें सहन करने का गुण साथ में लेना है, और तब हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकेंगे, औरों के प्रति शुभ भावना रख सकेंगे, दुआएं दे सकेंगे। और जो संगम में दुआ नहीं देता, वो कभी भी देवता बनने के लायक नहीं बन सकता। और दुआएं वही दे सकते हैं जिसके पास धैर्यता है, जिसके पास सहन शक्ति है। नहीं तो किसी ने कुछ बोल दिया और तुरंत आवेश में आकर के दो चार ऐसे शब्द बोल दिया, वो हमारी बदवाई होगी। इतना ही नहीं, औरों को सुनाया, संकल्प चलाया, उस व्यक्ति के प्रति आपकी बदवाई निकल रहे, और देवता कभी बदवाए नहीं निकालती। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस गुण को धारण करो, तब आप अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तब आप बिंदुरूप स्थिति की जो कामना करते हैं, जो आत्माभिमानी बनने की जो कामना करते हैं, जो योग लगाने की जो कामना करते हैं, जो परमधाम में जाने की जो कामना करते हैं, वो कामना आपकी पूर्ण हो सकती है। उसके लिए हमें सारा दिन क्या करना है, सहन शक्ति की देवी या देवता बनकर के रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अखंड निर्विघ्न बनो, जो अखंड निर्विघ्न है वही अखंड योगी और वही महादानी, अखंड महादानी बन सकता है। तो इसीलिए हमें इस वर्ष में इस गुण को साथ में रखना बहुत जरूरी है, ताकि आज तक जो बाबा ने हमें अलग अलग पाठ पढ़ाए हैं, शांति का गुण, पवित्रता का गुण, तो इन गुणों को हम ला करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और कभी यह नहीं सोचना कि मुझे कब तक सहन करना है, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक सहन करना है, अंतिम समय तक सहन करना है। आगे चलकर के बहुत हमारे सामने बातें आएंगी जो कभी सोचा नहीं, वो भी आएगा, लेकिन हमें सहन करते हुए मंजिल तक पहुंचना है। ओम शांति।